अब इसके बाद आखिरी खौफ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो क्या है कि वो खौफ जो बंदे को नेकियां करने से ही रोक दे। आप कहेंगे ये भी कोई खौफ होता है? बिल्कुल होता है। बास लोग अल्लाह की तरफ से दी गई धमकी की शिद्दत और अल्लाह के अजाब जहन्नम की हौलनाकी और इनके अजाब की सख्ती सुनकर मायूसी और दिल शिकनी का शिकार हो जाते हैं और अपने दिल में ये हवा बिठा लेते हैं कि अब चाहे जितने भी नेक अमल कर डालें, जहन्नम के अजाब से निजात मिलना मुश्किल है। हवा खौफ को ही कहते हैं बेसिकली। इस मायूसी का शिकार होकर वो अमल सालेह करना तर्क कर देते हैं, क्योंकि इनके बकौल अब अमाले सालेह की अंजाम दही से क्या फ़ायदा। आपने सुना ऐसे लोगों से? हमने तो बख्शे नहीं जाना, जो कर लो जी, जन्नत में हमने कहाँ जाना है, चलो इधर ही मस्ती कर लो। जिसको जहन्नम की शिद्दत का पता चल जाए, क्या वो ये बात बोल सकता है कि चलो आग भी जाना है, यहाँ इंजॉय कर लें? ये तो ऐसे ही है कि जैसे किसी को पता है कि कल सुबह उठते ही किसी ने मुझे जला देना है, तो कहते चलो आज मैं ज़रा मौज मस्ती करूँ। उसका तो दिल धड़कने लगेगा कि कल होगा क्या, कल के अंदेशों में उसकी आज का सारा सुकून ख़त्म होगा। तो ये जो लोगों का खौफ है ना, कि ना हम इसको समझें, बस अमल छोड़ दें, ये बुरा खौफ है। और इसी के ऊपर आज बहुत कुछ बोला जाता है। आप लोगों को रूहानी तालीमात के नाम पे बाज़ दफ़ा ऐसे ही खौफ देते हैं, बस कुछ नहीं होगा, तुम्हारी नमाज़ों से कुछ नहीं होगा। और आपने सुना होगा एक जुमला जो राबिया बसरी की तरफ मंसूब किया जाता है, कि एक दिन उठी और पानी लिया और कहा कि मैं जहन्नम को आग लगाने जा रही हूँ और बर्फ़ लेके जन्नत को ठंडा कर दूँ। क्यों? कि तुम जहन्नम से बचने और जन्नत की आस में क्यों नेकियां करते हो? बस तुम अल्लाह की मोहब्बत में करो, जन्नत जहन्नम बाद की बात है। ये सब इसी किस्म के खेल हैं। ये मैं तो मानती नहीं कि ऐसा कॉल होगा उनका, अगर है भी तो ये दुरुस्त नहीं है। ऐसा खौफ जो आपको अमल से दूर कर दे, हद से ज़्यादा डरा दे, बेकार बना दे, अल्लाह की बंदगी और अतात से मुंह फेरने पर आमादा कर दे, ये ना अक्लन ठीक है ना शरण ठीक है। और ऐसा खौफ अमूमन उन लोगों में होता है कि जो बस अपने मन पसंद तरीक़ों से अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, और ये हराम है। उलमाए कराम इसको हराम करार देते हैं, शरीयत इसको हराम करार देती है। ना ये खौफ मतलूब है ना मकसूद है। और अल्लाह ताला ने जो मामलात दिए हैं दीन को सीखने के, सहाबा में ऐसा खौफ होता तो बैठे रहते। देखिए कभी सहाबा की ज़िंदगी पढ़ के तो देखें। अभी इंशाल्लाह सीरीज़ के बाद हम अगला टॉपिक सहाबा की शुरू करेंगे ये इस कोर्स के बाद, लेकिन आप फील करेंगे कि सहाबा में अमल था, हरकत थी। अल्लाह के नबी में खौफ था लेकिन हरकत वाला खौफ था। हमारा खौफ हमें आराम से बिठा देता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें फिर खौफ का आला मुकाम यानी हराम चीज़ों की तरफ पढ़ने वाला, यानी जब हमने सबसे पहले पढ़ा खौफ वाजिब अता करें, कि हम हराम को तो अपनी ज़िंदगी में जगह ही ना दें, इसके साथ साथ हम दूसरी चीज़ों को भी लें। अब सवाल पैदा होता है कि जब हमारे अंदर अल्लाह का खौफ आएगा तो मिलेगा क्या? तो 13 फवायद और समरात हैं हमारे पास, जिसको हम यहाँ देख रहे हैं। आइए ज़रा उसको देखते हैं, क्योंकि आप तो सोचते हैं कि अल्लाह का खौफ रखने से ज़िंदगी अजीरन। लोगों से पूछे ना, अल्लाह का खौफ ज़िंदगी बोर, अल्लाह का खौफ ख्वाहिशें ख़त्म। लोग यही सोचते हैं, अल्लाह का खौफ है कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ तो आप देखिए इतने फवायद हैं, और हर वो इबादत जिसे अल्लाह ने अपने बंदों पे फ़र्ज़ किया, इसके दुनिया में भी फ़वाद होते हैं और आखिरत में भी मिलेंगे। खौफ इलाही भी इबादत है, तो खौफ इलाही के नतीजे में दुनिया में भी फ़वाद मिलेंगे और आखिरत में भी मिलेंगे। और इंसानी कमज़ोरी है कि जब उसको किसी चीज़ का फ़ायदा नज़र आता है तो उसको पाने में वो ज़्यादा कोशिश करता है। तो हम फिर इसको अपने लिए सोचेंगे कि क्या मैं वाकई इसको पाने की कोशिश करूंगी और करती हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि बंदे का इखलास की तरफ रुझान बढ़ जाता है। जिस दिन से ये सीरीज़ शुरू हुई है आप इखलास के बारे में सुन रहे हैं। पहले दिन का लेक्चर मिस हुआ था, उसको रिकॉर्डिंग से जाके सुन ले। इखलास इतनी बड़ी दौलत है। तो जब खौफ आता है ना तो इखलास पैदा होता है। आप कह लीजिए कि खौफ लीड्स टू इखलास। जितना अल्लाह का खौफ ज़्यादा, आप खालिस होंगे। देखिए हर बंदा आला दर्जों के साथ कुरान पकड़ने नहीं आता। जिस दिन कुरान के कोर्सेज शुरू होते हैं उस दिन तो हाथ ही इतने गंदे होते हैं, कहते हैं ये मेरे हाथों में आ गई ये किताब, वजू तो कर लिया लेकिन मेरे ये गुनाहगार हाथ इस किताब को छुएंगे, मेरी जुबान मेरी आंखें मेरे कान इस किताब को पढ़ेंगी। उस दिन बहुत सारे लोग बड़े गंदे भी होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का खौफ आता है ना तो इखलास भी आता है। पहले दिन बंदा मुखलस नहीं होता, वक्त लगता है, नेकियां शुरू करते, आपको दिख रहा है ना कि मैं कर रही हूँ, लेकिन रियाकारी भी दिल में आती है, तारीफ से भी खुश होती हूँ, तनकीद पे छोड़ने को भी दिल करता है। करते रहे करते रहे, एक दिन आएगा कि खौफ के साथ करते करते जो काम आप आगे बढ़ेंगे तो आप मुखलस होंगे। मैं मुखलस लफ्ज़ को इधर या इखलास को कहती हूँ बेनियाज। आप मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे अच्छा कहो या बुरा, आप मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी इस चीज़ की तारीफ करता है कि नहीं करता, मैं तो अपने फ़ायदे के लिए आती हूँ। फिर ऐसे बंदे को किसी की बात चुभती नहीं है, परेशान नहीं होता। और ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आपके कपड़े पे कोई धब्बा लग गया, आप एक एक के पहले ही दिन उसको धो धो के फाड़ ही दे, दूसरा लोग क्या करते हैं, धुल गए ना साफ हो पहनो, दूसरी दफ़ा धोगे ज़रा और कम होगा, फिर तीसरी दफ़ा धोगे, आप देखते हैं 4-6 दफ़ा जब वो कपड़ा धुलता है तो दाग साफ हो चुका होता है। यही हमारा हाल होता है। और अल्लाह के लिए इखलास और खालिस होना ये पीक है, ये तो बहुत लंबे सफर है। सारे सहाबियों के साथ भी लफ्ज़ मुखलिस नहीं आया, उनमें भी कई इब्तदाई दर्जे के थे, कई दूसरे दर्जे के थे। तो खौफ बढ़ाते जाए, इखलास बढ़ता जाएगा। और इखलास के फ़ायदे क्या हैं, उसके लिए आप पहला टॉपिक दोबारा पढ़ें सुने तो इंशाल्लाह आपको उसकी कदर होगी। सूरत दहर, जिसको अल इंसान भी कहते हैं, उसकी आयत 9 और 10 में आता है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए खिलाते हैं, ना तो तुमसे बदला चाहते हैं ना शुक्रगुजारी। बेशक हम अपने परवरदिगार से इस दिन का खौफ करते हैं, या उस दिन से डरते हैं जो उदासी और सख्ती वाला होगा, यानी हम उस दिन से डरते हैं जो सख्तियों वाला दिन होगा। अब आप देखिए खाना खिलाना हमारे कल्चर में कितना मरगूब है। मेरा ख्याल है कि हमारी खुशी, हमारा गम, शादी, मंगनी, ब्याह, किसी के घर जाना पूरा ही नहीं होता जब तक हम किसी को खिलाते नहीं। ये मैं सोचती हूँ कि हम पाकिस्तानियों में या जो भी मुस्लिम्स हैं या जहाँ के भी हैं उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। हम खुद भूखे रहेंगे लेकिन दूसरे को खिलाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हम खुश होते हैं। हमारा कल्चर वो नहीं है कि अपना सेब खोला, काट के खाने लग गए, दूसरे को पूछा भी नहीं। मैं जहाज़ों में इस चीज़ को बहुत फील करती हूँ। अक्सर आप देखिए कि खाना आपके पास होता है ना, तो ये हो ही नहीं सकता, इसको ना पूछ उसको ना पूछ, वो खा ले ना खाए वो उसकी मर्जी है, लेकिन शर्म आती है। आप ब्रेक में अपना खाना खोल के बैठे, मेरा नहीं ख्याल के साथ बैठे को अपना पूछे, फितरी सी बात है हमारे कल्चर में। लेकिन अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा अपने शऊर के साथ सोचें कि मैं किसी को खाना क्यों खिलाती हूँ, अमूमन एक वजह होती है कि उन्होंने भी खिलाया हुआ है, दावत खाई है तो खिलानी भी पड़ेगी। मैं दावत तो छोड़े लोगों के मुँह से सुनती हूँ, इफ्तारियाँ खाई हुई हैं तो अब इफ्तारी करनी भी पड़ेगी। अच्छा जी, फिर दूसरी चीज़ हम क्यों खिलाते हैं, ना खिलाया तो लोग बातें करेंगे। मसलन एक नई दुल्हन ने शादी होके आई, अब सारी खालाओं ने बुला लिया, आपने नहीं बुलाया, ये भी एक मजबूरी है, यानी रस्मन भी बुलाते हैं कि अच्छा जी सब ने दावत की नई दुल्हन की तो मैंने बुलाना है, फिर सब ने उसको जोड़ा दिया तो मैंने ना दिया, तो वो क्या हो गया, वो लिवज हिल्ला नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ, फिर पकाया क्या कुछ, 10-10 खाने हम एक एक दावत में पकाते हैं, क्यों कि लोग सोचेंगे कि ज़्यादा नहीं पकाया। हालांकि वो जो आने वाले वो रोज़ घर में एक ही रोटी सालन बनाते हैं, आप 2 बना लें 3 बना लें दैट्स इट, ख़त्म। आप 10 डिशें बनाकर अगले को भी मुश्किल में डालते, खुद को भी। और ये सब चीज़ें अगर आम तौर पे हो रही हैं अच्छी नीयतों में, रिश्तेदारी, सिला रहमी, इट्स गुड, लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल रहम मुझे वो सिस्टर लगती हैं जो सारा दिन चूल्हा के आगे खड़ी हूँ, बल्कि एक दिन नहीं, लोग तो 2-2 दिन पहले शुरू होते हैं, और उनके खाने को खाने वो लोग आए जिन्होंने उसके बाद मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़नी। आज आप देखिए कि हमारी दावतें, हमारी शादियाँ, हमारी मेहंदियाँ, खाने बड़े बड़े क्या इस क्राइटेरियन पे होते हैं कि उसको खाकर लोग नेकियां करें तो हमें अजर मिले। ये सोच तो आप अपने शौहर के लिए रखें ज़रा कि मैं जो खाना पका रही हूँ इसको मेरे हस्बैंड खाएंगे, फिर उसके बाद वो ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो इबादत अल्लाह उनसे कराएगा, फिर वो फजर पढ़ेंगे, फिर वो कुरान पढ़ेंगे, फिर वो अल्लाह के रास्ते में भागेंगे, ये मेरा खाना जाके ताकत उनको दे रहा है। तो आपको यकीन करें अपने शौहर के लिए खाना पकाना इबादत लगेगा, तरजीहात को बदलने की ज़रूरत है। तो हमेशा इस हदीस पे अमल कीजिए कि तुम्हारा खाना मुत्तकी खाएं, तुम्हारा खाना तकवा वाले खाएं, साफ कह दें जिसको दावत पे बुलाएं इस सूरत में खाना खाएं कि आपने इसके बाद नमाज पढ़नी है। ये तो बड़ी बेखौफी की बात है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए इख्तमाम है, लेकिन हमारे ही खाने को खाकर कोई नमाज भी ना पढ़े, कोई कान पे जू नहीं रिंगती, मैं तो कभी ना खिलाऊं किसी को, अल्लाह जानता है। बंदा सवाब के लिए, सदके के लिए जरूरतमंद को दे दे, काफिर को भी दे दे, जिसको मर्जी दे दे, वो एक सदका है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आप दावत करें किसकी, कि जो बेनमाजी है, जो उसके बाद अल्लाह ना करे किसी हराम काम में हो, तो मेरे पास इतना वक्त ही नहीं कि मैं अपना वक्त ज़ाया करूं। मैं वही पैसा दे के किसी और को कहूंगी, किसी नमाजियों को, किसी इबादत गुजारों को ये खिला दे। तो हमें अपनी इन चीज़ों को भी देखना है। लेकिन बहरहाल ये कि ये अल्लाह का खौफ बढ़ेगा, इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये प्लस माइनस बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ खौफ इलाही से जो मिलती है, आमाले सालेहा करने पर इंसान को खौफ उभारता है। यानी जितना आप अपने अंदर खौफ महसूस करेंगे, उतना नेकियां करने को दिल चाहेगा। सूरत नूर आयत 36 और 37 इधर मौजूद है, जिसमें जो हमारे रेलेवेंट बात है वो क्या है, यखाफून यौमैन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार। यानी वो लोग जो मस्जिदों में होते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, और उनकी तिजारतें उनको गाफिल नहीं कर देती अल्लाह की याद से, ये लोग हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं। अब्दुलरहमान बिन औफ का नाम आपने सुना होगा, सुना हुआ ना, मदीना के बहुत अमीर शख्स बन गए थे। ये अलग बात है कि हिजरत करके आए तो जिस्म पे कपड़े भी पूरे नहीं थे। अल्लाह के नबी ने इनका भी भाईचारा कायम किया, एक अंसारी सहाबी के साथ इनको जोड़ दिया। उन्होंने इनको कहा कि आप जो भी मेरे से माल लेना चाहें मौजूद है। तो इन्होंने कहा नहीं, दल्लू नीला सूख, मुझे बाजार का रास्ता बताओ। खैर वो गए वहां और सारा मामला खत्म हुआ। इधर से चीज ली, शाम को आए तो कुछ नफा लेकर आए, कोई चीज खरीदी ली बेची। अल्लाह ताला ने थोड़े अरसे में इनको दौलत दे दी। इतनी दौलत थी इनके पास कि खत्म नहीं होती थी। किसी ने इनसे पूछा कि आपको अल्लाह ने इतना माल दिया, आखिर इसकी वजह क्या है, हिकमत क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तीन असूल बनाए हुए हैं अपनी कारोबार के। नंबर एक, मैंने अपने कमाने के लिए, जब मैं कारोबार में या अपने जॉब पे होता हूँ, तो रिजालुल्लातुल ही हिम तिजारतुन, इसको अपने लिए एक रूल बनाया हुआ है कि मैंने नमाज नहीं छोड़नी। मेरे पास ग्राहक खड़ा है, मैं कहीं मौजूद हूँ, जो ही नमाज का वक्त आता है ना, मैं वो काम बंद करके मस्जिद में पहुंच जाता हूँ। ये मेरा एक असूल है। अच्छा जी, दूसरा क्या है? दूसरा असूल क्या है उनका, कि मैंने ज्यादा नफे की तड़प नहीं रखनी। हम तो कहते हैं ना, अमीर वो होता है जो ज्यादा नफा लेता है। वो कहते हैं ये नहीं करना। क्या करना है? जो भी पहला ग्राहक आता है ना, कि जो मेरी चीज खरीदना चाहता है, अगर मुझे कुछ फायदा हो रहा है, नुकसान ना हो, तो मैं दे देता हूँ। फिर उसमें वो अपना एक वाक्य सुनाते हैं। कहते हैं मैंने एक दफा 1,000 ऊंट खरीदे, इस नीयत से लिए कि इसको आगे महंगे करके बेच दूंगा। जब ऊंट मेरे पास आ गए, तो जो पहली बोली आई वो उतने की थी जितने के मुझे पड़े। लेकिन मेरा असूल है कि नुकसान तो नहीं हुआ ना, तो मैंने उसको ओके कहा, बस एक शर्त कर दी। मैंने कहा कि ऊंटों की गलों में जो रस्सी डली हुई ना, वो मैं उतार लूंगा, ऊंट तुम ले लो। उसने कहा ठीक है। कहते हैं मैंने वो रस्सियां उतारी, 1,000 रस्सी मेरे पास आ गई और ऊंट सारे मेरे जितने में आए थे उतने में बिक गए। बाद में हर रस्सी मैंने एक एक दिरहम के बदले बेची, मुझे फिर भी 1,000 दिरहम का फायदा हो गया। मैंने नाजायज नफा नहीं लेना और नाफरमानी का काम नहीं करना। तो आप देखिए कि जब बंदा अल्लाह का खौफ रखता है ना, तो उसको माल में भी कमी नहीं होती और उसकी इबादत और ज्यादा अच्छी होती है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने खौफ इख्तियार किया, वो सुबह सवेरे सफर के लिए निकला, और जो सफर कई राह में चल पड़े, वो मंजिल तक रसाई पाकर रहेगा। याद रखो, अल्लाह से सौदेबाजी बड़ी कीमती है और अल्लाह का सौदा जन्नत है। क्या पता चला? जल्दी कामों का आगाज करें। जितना सुबह उठ के आप कारोबार पे जाएंगे, जितना अल्लाह ताला के हुक्म से काम शुरू कर देंगे, उतने उस दिन में आपके लिए भी बरकत होगी। तो क्या पता चला कि अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी चीज़ है और ये इंसान को आमाल पे लाता है। तीसरी एक बड़ी ही सिंपल सी वजह समझ आती है, तीसरा फायदा अल्लाह के खौफ का, कि गुनाहों में से कशिश खत्म हो जाती है। खौफ इलाही से गुनाहों की रंगीनियां मांद और सरूरो कैफ मुकदर हो जाता है। बात तो जुमला मुश्किल है, आप आसानियों में समझ लें। रात को नाइट क्लब में कोई गया, खूब नाचा कूदा उछला कूदा, उसको हल्का सा शक पड़ जाए डॉक्टर की तरफ से कि देखो वहां जाके शराब पियोगे फिर नाचोगे, इससे तुम्हारे दिल पे बोझ पड़ेगा और देखना कल सुबह तक तुम्हें हार्ट अटैक हो चुका होगा, गुमान रख लें, या तुम्हारे लंग्स काम करना छोड़ देंगे। क्या वो शख्स वो मस्ती की रात गुजार सकता है? कर भी रहा होगा ना किसी के कहने पे, तो खौफ क्या होगा, अभी देखना थोड़ी देर बाद दिल में दर्द होगा और गिर जाऊंगा। बस यही समझ लें, खौफे खुदा बंदे को गुनाहों की कशिश कम करवाने में मददगार होता है। इसको आप लिख लें, इतना खूबसूरत ये नुस्खा है, अपना गुनाहों से मिलान कम करना, दुनिया में भाग दौड़ में से अपने आप को खींच के लाना, शहवतों का कला कमा हो जाता है। इमाम इब्ने कुदामा कहते हैं, खौफ इलाही के समरात और फवायद में ये भी है कि खौफ खुदा शहवात का कला कमा कर डालता है और गुनाहों की लज्जतों को बदमजा कर देता है। बस अल्लाह से डरने और खौफ खाने वालों की निगाहों में पसंदीदा गुनाह भी मकरूह और बदमजा हो जाते हैं। देखिए, एक वक्त होता है कि इंसान गुनाह करता है ना और उसको गुनाह नहीं समझता, ऐसे ही है ना। कोई कहता है ना कि आप तो बड़े नेक हैं, तो आप उसको जवाब में क्या कहते हैं, नेक तो हम तब थे जब कुरान नहीं पढ़ते थे। किसी स्टूडेंट की शेयरिंग याद आ गई है, 1 दिन पहले भी किसी ने शेयर किया था, तो ये मेरे सामने खुद भी हुआ कि उन्होंने माइक पे आके कहा कि हम तो इतने मजे से जन्नत जा रहे थे, ये उस्ताजा ने आके हमें कहाँ डाल दिया। इतने प्यारे जुमले थे कि हम तो बड़े मजे से जन्नत के रास्ते पे जा रहे थे, बाद में पता चला सबीलुल जन्नत तो कोई और है। और ये सच है, हम अपनी ख्वाहिशों की और खुशफहमियों की जन्नत में जा रहे होते हैं। हम कहते हैं जो भी करेंगे देखना हम जन्नती हैं, हम उम्मते मोहदिया में से, और हम फलां, और हम फलां की नस्ल से, और हम आलिम की औलाद, और हम हाफिज और कारी। लेकिन जिस दिन अल्लाह का खौफ आता है, लज्जत खत्म। आप इसको समझे, बीसियों मिसालें आपको दुनिया से समझ आएंगी। पुलिस के हाथों पकड़े जाने का खौफ हो तो कोई कानून शिकनी हो सकती है? आप कहते हैं रेड लाइट तोड़ के आगे निकलते हैं, कुछ लड़के हैं 4-6 बैठे गाड़ियों, कहते हैं देखना ट्रैफिक सिग्नल को हम ओबे नहीं करते, देखते हैं क्या मजा आएगा, फिर हा हुरा करेंगे। लेकिन उनको पता है जूं ही वो आगे निकले और कैमरे ने उनकी तस्वीर ले ली या पुलिसमैन ने देखा, और उनके घर में कुछ 700-800 करोन का जुर्माना भी आ गया, और ज्यादा भी मस्ती करेंगे तो चालान हो गया। मुझे बताएं ये मस्ती कर सकेंगे? छोटी सी मिसाल है, अगर पकड़े जाने का डर हो तो क्या दुनिया के कानून भी बंदा तोड़ता है? नहीं तोड़ता। आप कहते चलो बगैर वीजे के जरा एंटर होके देखते हैं किसी मुल्क में, कितना मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। आपको पता है कि वहां बैठे हुए जो इमिग्रेशन पे लोग हैं वो आपकी एक एक चीज देख लेंगे, और देख लिया तो कोई जुर्म निकल आया तो पकड़ लेंगे आपको। जब पकड़े जाने का डर होता है ना, तो फिर ये मस्तियां खत्म होती हैं। आज हम क्यों इन गुनाहों में पड़े होते हैं? क्योंकि हमें पकड़ का डर नहीं, हम सोचते हैं अल्लाह ने नहीं पकड़ना। और याद रखिए, जिस कौम का अकीदा आखरत मजरूह होता है ना, उनमें फिर खुशफहमियाँ और बातें, वो तिल का अमानीश हम सूरत बकरा में आप पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं ये इनकी अमानीश थी कि देखना इस दरवाजे से गुजर जाओ तो जन्नती, ये पानी पी लो तो जन्नती, और फलां कब्र पे जाके माथा टेक दो तो जन्नती हो जाओगे। ये चीज़ें इंसान को दुनिया में हों तो फिर दुरुस्त नहीं। फिर आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में बेहतरीन इंसान बनाकर पेश किया। हलाल चीज़ों से फ़ायदा भी उठाते थे, मुबाह चीज़ें उनके लिए बहुत पसंदीदा थी। आपने कहा कि मुझे दुनिया के माल में से औरतें और खुशबू पसंद है, जायज़ है ना, हलाल की जगह। क्या किसी नाजायज़ जगह पे नज़र उठा सकता है एक बंदा? एक लड़का क्या ऐसी जगह पे नज़र डाल सकता है जहां उसको नहीं डालनी? कोई चिट चैट हो सकती है अगर अल्लाह की पकड़ का डर हो? ये हाथ गवाही देंगे, उंगलों की पोरें कल गवाहियां देंगी, जिससे हम ऐसी बातें करते हैं। आज क्या क्या मुसीबतें बन गई, पहले तो फेसबुक बदनाम था, अब उस पे चूंकि कुछ इस्लामिक चीजें आने लग गई तो उसको छोड़कर स्नैपचैट और पता नहीं चैट और क्या कुछ आ गया। लड़के लड़कियों, अब आप देखिए वो वक्त आ गया कि हमारे हाथों में डेटिंग के एप्स मौजूद हैं। हमारे हाथों से मुराद हमारी नस्लें ही है ना। तुम डेटिंग करना चाहते हो, आओ दोस्ती करते हैं, तुम कौन हो कैसे हो आओ बातें करते हैं। मैं कहती हूँ खौफ आता है मुझे ये वक्त का सोच के कि ये अल्लाह की नेमतें जो उसने हमें दी थी, अगर हम अपने बच्चों के जहन पुख्ता कर चुके होते 15, 16, 17 साल की उम्र तक, तो ये ही चीज़ें दुनिया में इस्लाम फैलाती। ये कंपनियां बनाने वाले जो ये करते हैं, शायद अल्लाह इनके कफारे कर दे कि इससे इतनी खैर फैल रही है। हमारा मसला ये है कि जहन साजी किए बगैर अपनी ये चीज़ें दूसरों में आम करते हैं। तो लिहाजा बच्चों से आपने अल्लाह का खौफ लाना है या गलत चीज़ों से रोकना है। आज के दौर के ये गुनाह आम है, आंखों से क्या देखते हैं, हाथों से क्या देखते हैं, और इतना आसान है गलत चीज़ देखना। मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कभी तसव्वुर में ही नहीं आया कि वो लफ्ज़ लिखे। लेकिन जिनके कच्चे जहन, तजस्सुस की उम्र, इधर गंदगी उधर गंदगी, सड़कों से गुजरते हुए गुजरना मुहाल है। क्या एक इंसान ऐसे काम करता? किसी एक ऐसी जगह से मुझे गुजरना पड़ा कि बस ऐसे लगता है कि आंखें गंदी हो गई। एक दिन भी गुजरी और मस्जिद का रास्ता, तो मैंने कहा ये कौन बेहया है? मैं समझी कि ये कपड़े बेचते हैं ऐसे। तो बाद में जब दोबारा किसी और के साथ से गुजरे तो मैंने कहा कि आप लोग यहाँ रहते हैं, आप इन दुकानों का बायकॉट क्यों नहीं करते? फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये शायद वो सन बाथ लेने वाली को मुसीबतें हैं कि अपना जिस्म ऐसे जिस्म के एक एक अंग खोल खोल के दिखाए हुए कि वल्ला ही मैं कहती हूँ क्या ढके और क्या छुपे। लेकिन इससे भी बड़ी जो दुख की बात, कहती इसी दुकान के अंदर अपने किसी मुसलमान भाई ने पता नहीं क्या दुकान खोली है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। फिर मैंने उन्हें कहा आप खत लिखे, आप कम्यून को दें कि हमारे बच्चे हैं, हमारे अनमेरिड बच्चे हैं, हमारे मर्द हैं, कुमारे मर्द इधर मौजूद हैं, क्या हालात होते होंगे, क्या ये नजरों की गंदगी नहीं? और गुजरे करें, क्या करें, हम मजबूर है, कहाँ मजबूर है आप। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ उस इलाके में रहने वाले 50% लोग ये लेटर लिख के कम्यून को दे दें तो वो जरूर उस दुकान को कहेंगे, जो करने अंदर जाके करो। और उन्होंने जगह भी वो ली होती है जहां दिन में मेरे गुमान के मुताबिक हजारों लोग गुजरते हैं। आपने कभी सोचा आपका बेटा वहां से गुजरता होगा, आपका शौहर वहां से गुजरता होगा, आपकी जवान बच्चियां वहां से गुजरती होंगी? और मेरे गुनाहगार कानों ने वहां से लड़के लड़कियों को खड़े होकर गुजरते सुना। मगरिब की अजान हो रही थी, मुसलमान लड़के लड़कियां शक्ल से लग रहे थे और वो जो आपस में बातें कर रहे थे मैं आपको बता नहीं सकती। कि जिस वक्त मस्जिदों में जाने वाले जा रहे हैं तो वो उस वक्त खड़े वहां क्या बातें कर रहे थे। ये रोड की बात है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, मुझे कान नहीं लगाने पड़े, ये फुटपाथ पे खड़े लड़की लड़कों की बातें बता रही हैं। आप क्या सोचते हैं इन चीजों का असर नहीं होता? ये गंदगी है, ये फिल्थ है, ये डर्टीनेस है, आप इसको जो मर्जी कहें, ये खत्म करना है अल्लाह का खौफ। मरसद बिन मरसद को अल्लाह का खौफ ही था तो उन्होंने अंधेरी रात में उन आग की दावत नहीं कबूल की ना। किफल को अल्लाह का खौफ ही आया था तो उन्होंने उस औरत को छोड़ दिया था ना। आज मैं और आप अपनी नस्लें बचाना चाहते हैं, अपने नस्ब पे वो बट्टे लगवाने से बचना चाहते हैं ना, तो अपनी नस्लों को अल्लाह का खौफ दें। और उसके लिए आपको अपने अंदर अल्लाह का खौफ लाना पड़ेगा। ये माँ के खून से जाता है, माँ के दूध से जाता है, माँ के हाथ की रोटी से जाता है। ये जो रोटियां पकाते हैं ना अपने बच्चों की दिन में 2 बार, इसके जरिए खौफ दें बच्चों को। आप कहते हैं कि स्कूल ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं, मस्जिदों में भेजें, क्या करें, ये करें वो करें। मैं कहती हूँ काल पड़ गया, काल पड़ गया आज। आप जो खाना पकाती हैं ना उसके जरिए खौफ दें बच्चे को अल्लाह का। आप उसको जो खिलाती हैं, उसके कपड़े धोती हैं ना, उस वक्त कहा करें अल्लाह इसके गुनाह भी धो दे, अल्लाह ये कपड़े इसी कर रही है ना इसके, इसी तरह इसके भी बलकस निकाल दे। जब माँ का दिल अल्लाह से लगा होता है, ये कैसे हो सकता है कि इंसान अपने आप को तो बचा ले और दूसरों को ना बचाए? और आप फिर इसका इलाज क्या कहते हैं, घर बैठ जाओ, फिर क्या होगा? जो होता है वो सबको पता है। जो थोड़ी बहुत नेकी कर रहे थे, जिससे कुछ फायदा दूसरों को देना था, उसी की बरकत से शायद अल्लाह ने आपको कई चीजों से बचाया, वो और ही अल्लाह की बरकतों से निकल गए। तो लिहाजा इस खौफ को अपने अंदर लाने की जरूरत है। अल्लाह हू अकबर। तो ऐसी सब हराम चीजें निकल जाती हैं। कैसे होगा ये सब कुछ, इसमें आखिरी हिस्सा थोड़ा पढ़िएगा। मसलन ये लिखते हैं कि शरण हराम करार दी गई चीजों के सुरूर व कैफ को अल्लाह के अजाब और इसके वादो वईद के इस्तेहसार के जरिए मुकदर किया जाता है। यानी खुलासा क्या है कि इन सारी चीजों से लोगों को बचाने का तरीका क्या है कि अल्लाह के अजाब उनके सामने आम किए जाए। यानी लोग गुनाह आम करते हैं ना, आप गुनाह की सजा आम करें। और इस्लाम का मिजाज जो है, सूरत नूर में हमने इस पर बड़ी डिटेल से बात की थी कि आज गुनाहों को और खूबसूरत करके दिखाया जा रहा है। इस्लाम गुनाह को पब्लिसाइज नहीं करता, जिना को नहीं उसने एक्सपोज किया, वो हालात नहीं बनाए कि जिसको देखकर जिना आम हो, लेकिन उसकी सजाओं को खोल के रखा। क्या जानी व जानिया तो क्या हुआ? मसलन एक जानी और जानिया यौम आखरत को जानियों को जो अजाब दिया जाएगा उसकी याद ताज़ा कर लें और इस लहू और पीप के बारे में तसव्वुर करें जो इनके जिस्म से उस दिन बह रहा होगा, और जानी लोग उस पीप और लहू को पी कर अपनी प्यास बुझाएंगे। ये तो यौम आखरत की बात है। अगर इनको कब्र के अजाब का पता चल जाए जो इनको कब्र में मिलने वाला है तो ये हराम की खरमस्तियाँ दूर हो जाएं और ऐशो इशरत की सारी धम्मा चौकड़ियाँ वो भूल जाएं और बदकारी और फुखशकारी का मज़ा बदमज़ा हो जाए। शराब नोशी करने वाले को अगर पता चल जाए कि इसने दुनिया में शराब नोशी की तो जन्नत की शराब तहूर का जाम पीने से महरूम होना पड़ेगा तो दुनिया की गंदी और सड़ी बदबूदार शराब पीने की तरफ तबीयत रागिब ना हो और इस बदबूदार और सड़ी शराब को वो मुंह लगाना गवारा ना करे। सच कितना जरूरी है इस वक्त इस्लामिक सजाओं को और जन्नत और जहन्नम के वाक्यात को आम करना। कभी जन्नत की रगबत सुन के जवानों को शौक आ जाता है नेकियों का, और कभी जहन्नम का खौफ सुनकर वो गुनाहों से दूर होते हैं। आप अपने ऊपर लेकर सोचे, जो कुरान से जुड़ चुके उससे पहले क्या थे? कभी डर था माँ का, बाप का डर था, बदनामी का डर था, कहते हैं जो मर्जी हो हम तो नस्ती पूरी करेंगे। तो कुरान ने आपको कीमती बना दी। अब रात को आप बाहर निकलते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे कि मैं बाहर जाऊंगी कुछ हो ना जाए। तो बेखौफी बंदे को बहुत आगे करती है। इमाम इब्ने कुदामा कहते हैं, जैसे कि शहद उस शख्स की नज़र में नापसंदीदा हो जाता है जिसको ये पता चल जाए कि उसमें जहर मिला हुआ है। ये बात सुनते ही मारे खौफ के शहद नोशी की ख्वाहिश सिरे से ख़त्म हो जाती है और अज़ा और जवारेह में शाइस्तगी पैदा हो जाती है, दिलो दिमाग को तस्कीन होती है। तकब्बुर और गरूर खुद ब खुद इस खबर को सुनकर चलता बनता है और खौफ की वजह से पूरे तौर पर इसको यही फिक्र लाहक रहती है और इसके अंजाम कार के खतरे की तरफ इसकी निगाह लगी रहती है। अब इसकी नींद हराम हो जाती है, इसकी तवज्जो किसी और तरफ नहीं पड़ जाती। अब इसका अहम तरीन मशगला यही खबर बनती है, इसकी सोच विचार, इसका गौर व फिक्र, यानी हर चीज़ पर यह खौफ जारी हो जाता है कि मुझे कोई पकड़ लेगा। सांसें घुटने लगती हैं और अचानक फिर उसकी ज़ुबान से यही लफ्ज़ निकलते हैं कि मैं अपने आप को बचाऊं। फूक फूक के कदम रखता है। अब तवील कॉल है, आप पढ़ सकते हैं पूरा खुद भी, कि गुनाह की पकड़ का खौफ बंदे से चीज़ों की लज्जत ख़त्म करता है। खाना खाते हुए ज़रा सा शक पड़ जाए ना कि जो गोश्त था वो ख़राब हो गया, तो अल्लाह ही, मैंने देखा कि जो हसास लोग होते हैं ना उनकी फ़ौरन भूख ख़त्म हो जाती है, एक लुकमा अंदर नहीं जाता। कहाँ गुनाहों के ये लुकमे होंगे? तो आप और मैं सोचें, आज इंसानियत इतनी बेखौफ क्यों है? इस दर्द को महसूस करें, घरों के नक्शे चेक करें, उठने बैठने को देखें, क्या चलता है घरों में, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किधर है, घरों से आवाज़ें क्या आती हैं, किस नाम पे आती हैं, किस किस तरह आज हमने गलत चीज़ों को अपने लिए जायज़ करार दिए। वजह यह है कि हमें इस बात का खौफ नहीं है कि हकीकत में हम कल पकड़े जाएंगे। इसलिए इसका रास्ता यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों में कुरान को लाएं। कुरान अल्लाह का खौफ पैदा करता है, किसी की बड़ाई का एहसास भी बंदे को उसकी बात मानने के लिए तैयार करता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें वो अपना सच्चा खौफ दे दे। अल्लाह के नबी की एक दुआ भी है ना कि अल्लाह मैं तुझसे तेरा वो खौफ मांगता हूँ जो मेरे और मेरे गुनाहों के बीच में हायल हो जाए। मा तहूल बैनी व बैना मासियतिक, कि अल्लाह मुझे वो खौफ दे जो मेरे और मेरे गुनाहों में फ़र्क डाल दे। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।